ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ अधिनियम 1995 में और संशोधन करने के लिए निचले सदन में विधेयक पेश किया है। विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों और कामकाज के साथ साथ वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, वामदल और अन्य ने इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि यह विधेयक एक विशेष समुदाय के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून के जरिए बनी संस्था है और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड इबादत करने की जगह नहीं है और आस्था के मामले में इसके हस्तक्षेप का आरोप नहीं उठता। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। श्री सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिल्ली में हुए सिख दंगों का जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने आज न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में ताकिना वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू न्यूजीलैंड की दो दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह राजधानी वेलिंगटन पहुंची। न्यूजीलैंड के गवर्नर जेम्स सिंडिकीरो की उपस्थिति में वेलिंगटन के गवर्नमेंट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू गवर्नमेंट हाउस में न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल जेम्स सिंडिकीरो, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधानमंत्री सह विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भूस्खलन से प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे। यात्रा को लेकर कन्नूर और वायनाड में तैयारियां जारी हैं। यात्रा से पहले आज कन्नूर और वायनाड में सुरक्षा बैठकें हुई। प्रधानमंत्री के वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने की संभावना है। इस बीच केरल और कर्नाटक की सैन्य इकाइयों से आए लगभग 500 सैन्यकर्मियों ने वायनाड से वापस लौटेंगे। नवनिर्मित बेली ब्रिज को मजबूत करने के लिए एक छोटी टीम और हेलीकॉप्टर खोज दल और कुछ दिनों तक वायनाड में रहेंगे। आज दोपहर सशस्त्र बलों को गर्मजोशी से विदाई दी गई। राज्य मंत्री पीए मोहम्मद रियाज और एके मसिंद्रन भी वहां उपस्थित रहे। सेना के जवानों ने पिछले 9 दिन से चल रहे खोज और बचाव अभियान के लिए स्थानीय लोगों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। आज मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। स्थायी जमा सुविधा एसटीएफ दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर और बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। आर्थिक वृद्धि को गति देने और मुद्रास्फीति को 4% के स्तर पर लाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समिति ने नीतिगत दरें यथावत रखने का निर्णय लिया। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6, 7 और 8 अगस्त को मुंबई में हुई। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आज रात शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने कहा कि करीब 15 लोग अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में शपथ ले सकते हैं। उन्होंने देश में 3-4 दिन में हालात सामान्य होने की संभावना व्यक्त की। इस बीच सेना ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि अगर किसी को भी तोड़फोड़, हिंसा और हत्या की धमकी मिली तो वे निकटतम सैन्य शिविर से संपर्क करें। पेरिस ओलंपिक्स में आज रात मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अपना खिताब बरकरार रखने उतरेंगे। वहीं पुरुष हॉकी टीम आज शाम कांस्य पदक के लिए स्पेन के साथ खेलेगी। पुरुषों की कुश्ती में भारत का एकमात्र पहलवान अमन सहरावत भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।